ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने हमें बहुत स्मृतियां दिलाई है। बच्चे, तुम क्या थे, अब क्या बन गए हो? क्या थे और अब क्या बन गए हो? तो क्या थे हम? विश्व के मालिक थे। स्वर्ग का अधिकार हमारे हाथ में था। सारी दुनिया पर राज्य करते थे। भारत कितना धनवान था, और अब क्या बन गए हो? राव से रंक बन गए हो, फूल से कांटे बन गए हो, मंदिर लायक थे और बंदर बन गए हो, ऐसे ही कहेंगे ना। तो अभी मैं आया हूं तुमको फिर से बंदर से मंदिर लायक बनाने, फिर से कांटे से फूल बनाने, और फिर से ये जो विश्व कांटों का जंगल बन गया है उसे फूलों का बगीचा बनाने। तो क्या करो बच्चे, ये कैसे ये सब हुआ? क्योंकि पतित बन गए, अब फिर से पावन बनो, तो फिर वही भारत सोने की चिड़िया बनेगा, फूलों का बगीचा बनेगा और मंदिर लायक बनेंगे। तो कितनी स्मृतियां बाबा हमें दिलाते हैं, और तो हम उसके लिए क्या करते हैं? बाबा कहते हैं ये खेल है, इसको खेल देखो, कैसे तुम चढ़ते हो, कैसे उतरते हो। तो बाबा ने बहुत मिसाल, एक सुंदर मिसाल दिया है, दिखाते ना। एक तो कठपुतलियों का ही खेल है, कठपुतलियों को कोई नचाता है तो जैसे तुम कठपुतली की तरह सृष्टि रंगमंच पर नाचते हो, कर्म करते हो, फिर फल पाते हो, नीचे आते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो। फिर दूसरा मिसाल बाबा क्या सुनाते हैं, जैसे खिलौना आता है, वो मछलियां पहले ऊपर है, धीरे 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 वो मछली नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, फिर उसको ऐसे उल्टा करते हैं तो फिर जैसे मछली ऊपर हो जाती है, ऊपर आ जाती है, फिर नीचे नीचे आती है। तो चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, बस ये खेल खेलना है। तो इसी रंगमंच पर ये खेल खेलते हैं। तो बाबा ने उसको इतना सुंदर रूप से समझाया है, सुनते बाबा के महावाक्य। आज 18/9/2025 है। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब क्या होगा? तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। तो हम सब कांटे से फूल बन रहे हैं। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए, बंदर मिसल थे, अब बाबा मंदिर लायक बना रहे हैं, तो मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना है जो हम फिर से मंदिर लायक बने? उत्तर है, तो मंदिर लायक बनना है तो पहले चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन हमारी कैसी है। बंदर जैसी चलन होगी तो मंदिर लायक थोड़ी बनेंगे। तो मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन कैसी होनी चाहिए? चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। रॉयल, हमारे बोल भी रॉयल हो, व्यवहार भी रॉयल हो, मीठा हो। तो चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। खाली हमें नहीं महसूसता है, दूसरों को भी महसूसता है कि ये कितने मीठे हैं। इतना मीठापन हो जो दूसरों को भी उसकी महसूसता आए। उसके लिए क्या करो? अनेकों को बाप का परिचय दो तो आपके नजदीक आएंगे और आपके मीठेपन का उनको आभास होगा। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। अपना ही कल्याण होगा ना, सर्विस पर लगे रहो तो बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो अपना कल्याण के करने लिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तो बाबा को हम वायदा करते हैं कि दुनिया कैसी भी पतित है लेकिन हम तो तुम्हारे हो गए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारी कसम ना, तो प्रतिज्ञा करते हैं हम कि हम श्रीमत पर इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। सभी ने ये प्रतिज्ञा की है ना, इस भारत की भूमि को हम पतित से पावन बनाएंगे, ये प्रतिज्ञा की है। और श्रीमत पर भारत खास और दुनिया आम सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात ना ऊंचा ये ख्यालात है, तो इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है कि हम भारत को कितना ऊंच बना रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं श्रीमत पर। तो इतने ही ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे, क्या होगा? फूल बन रहे हैं, कांटे थे फूल बन रहे हैं, तो ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। कहते कैसे बनेगा, इतने कांटे हैं, इतना दुनिया जंगल है, ये कैसे बनेगा? तो बाबा कहते तुम तो बनो पहले, समय अनुसार ये सब हो जाएगा। और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है। शिव बाबा भी बागवान, ब्रह्मा बाबा माली, हम बच्चे भी सब माली। हाँ, तो क्यों नहीं बनेगा ये कांटों से फूल, सारा जंगल बगीचा क्यों नहीं बनेगा? तो बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है न कि शरीर, बागवान भी आत्मा है, शिव बाबा भी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा भी आत्मा है, हम सब आत्माएं हैं, तो शरीर नहीं है बनता। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था, कब था ये बगीचा? जब यहां देवताएं राज्य करते थे, वहां कोई दुख नहीं था। यहां इस कांटों के जंगल में तो दुख है, रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से तो कोई फूल नहीं बनते। कितने साल लग गए फूल बन रहे हैं, फिर कभी कांटे बन जाते हैं, फिर फूल बनते हैं। तो बाबा कहते फट से तो कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी है, अजामेल है, हम जन्म जन्मांतर के पापी, एक जन्म के पापी नहीं है, 63 जन्मों के पापी है। तो अजामेल, अजामेल तो कितना पापी था, अजामेल है। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे, अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, बस देवताओं की यादगारें हैं, चित्र हैं, पर वो देवताएं अभी नहीं हैं। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, राजधानी के हेड्स के ही चित्र हैं। राजधानी के हेड्स कौन होंगे, कौन थे सतयुग की राजधानी के हेड्स थे लक्ष्मी नारायण, और त्रेता युग की राजधानी के हेड्स थे राम सीता, इसलिए उनके ही मंदिर हैं। आप प्रजा के तो मंदिर नहीं होंगे ना, तो राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उनको ऐसा बनाने वाला है निराकार शिव, उनका चित्र है बस, बस और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी विशेष शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं, कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, वो परम आत्मा है तो है, तो वो भी आत्मा लेकिन परम है, तो वो भी तो ऐसा होगा ना स्टार मिसल, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए तो कहां भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं, किसी शास्त्र में लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं लिखी है, बाकी तो सब देवताओं की कुछ न कुछ ग्लानि लिखी है, केवल लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं है। तो बाबा कहते हैं इनके लिए कहां भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं, बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापुर में कब कहां ले जाते हैं, वैकुंठनाथ भी कहते हैं तो वो तो फिर सतयुग होगा, फिर द्वापुर में भी ले गए हैं, तो कब कहां ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए तो सब कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक थे, उनको तो द्वापुर कलयुग में नहीं लाएंगे ना, वो तो स्वर्ग के मालिक थे। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है, मनुष्य बिचारे एकदम मूंझे हुए हैं, क्योंकि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ये तो कोई समझते ही नहीं है, इसलिए राधे कृष्ण को तो कहां द्वापुर में ले गए और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। तो मनुष्य बिचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। जो बाप द्वारा समझते हैं वो फिर समझाने लायक भी बनते हैं, जो समझते ही नहीं है तो वो तो बेसमझ है, फिर हम बच्चे बाबा द्वारा समझते हैं, फिर दूसरों को समझा करके हाँ बाबा कहते हैं उनको भी लायक बनाते हैं, तो वो समझाने लायक भी बनते हैं। हाँ बच्चे लायक बनते हैं फिर औरों को लायक बनाते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भल कितना भी समझाओ, पहले तो लायक खुद को बनना पड़ेगा, तब दूसरों को समझाओ फिर उनको लायक बनाओ, भल कितना भी समझाओ। परंतु बाबा कहते ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है, लायक बनते हैं फिर नालायक न लायक भी बन जाते हैं, ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो कि हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं। कैसे कर रहे हैं रूहानी सर्विस भारत की? अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं ना कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो, क्या सेवा करते हो, तो तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं उनको कहो, वो जब पूछते हैं आप भारत की क्या सर्विस करते हैं, तो कहो कि हम जंगल को जंगल से बगीचा बना रहे हैं। अब ये भारत कांटों का जंगल बन गया है, अब इस भारत को हम फूलों का बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है गार्डन, ये है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं, ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए, है कितने सुंदर सुंदर लक्ष्मी नारायण के चित्र है हमारे पास भी, और भक्ति मार्ग में भी बहुत सुंदर चित्र बनाते लक्ष्मी नारायण के। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में तो बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, खास करके बिरला मंदिर, बिरला मंदिर जहाँ भी है वहाँ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति होती है, तो कितना सुंदर बनाते हैं, तो बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, पर कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र दिखाते हैं। उनका क्या राज है वो भी तुम बच्चे समझते हो, कहाँ लक्ष्मी नारायण को सांवरा भी बनाएंगे और कहाँ तो बहुत सुंदर गोरा बनाते हैं बिल्कुल मार्बल का। तो बाबा कहते हैं उनका भी राज है, गोरा क्यों काला क्यों? तो तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, नशा चढ़ता है, हम सब मंदिर लायक बन रहे हैं, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। बाबा तो बनाते हैं लेकिन सब नहीं बनते हैं मंदिर लायक। अब प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे क्योंकि प्रजा तो नहीं मंदिर में रखेंगे, प्रजा तो उनकी पूजा भी नहीं होगी, केवल जो हेड्स है लक्ष्मी नारायण उनकी पूजा होती है, तो प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे। प्रजा उन्हों की होगी, प्रजा किन की होगी? जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं, प्रजा उन्हों की होगी ना, सर्विस करते हैं तो प्रजा बनाते हैं तो प्रजा उनको बहुत मिलती है, पर खुद तो राजा रानी बनते हैं। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तो तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, हमारी है रूहानी सोशल सर्विस। हमारी संस्था को क्या कहते हैं? सोशल स्पिरिचुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिचुअल तो है ही है पर अभी थोड़ा सोशल भी, हम बहुत एक्टिविटीज करते हैं ना सोशल की भी, नशा मुक्त अभियान कितना चारों ओर चल रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये सोशल हो गया। तो बाबा कहते हैं रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, चलन सुंदर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर तो पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा उनका? भले कितना भी समझाए लेकिन वो खुद बाबा की याद में नहीं है तो वो जो भी बोलेगा उसका तीर किसी को लगेगा नहीं, उनको वो अनुभव कुछ नहीं होगा, तो उनको तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात, अब बाबा ने पहली कांटों से फूल और मंदिर लायक की बात कही, अब दूसरी बात है शिव जयंती, तो शिव जयंती पर बाबा समझाते हैं। दूसरी बात, समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उस समय ये ईमेल वगैरह तो कुछ थे ही नहीं ना, तो तारे भेजते थे, टेलीग्राम, बहुत टेलीग्राम भेजते थे बाबा को शिव जयंती पर, हैप्पी बर्थडे ये भी ऐसे लिख देते थे टेलीग्राम में, क्योंकि शिव जयंती मना बाबा का जन्मदिन, तारे टेलीग्राम भेजते थे। तो बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, उन्हें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए, उन तारों में टेलीग्राम में क्या लिखना चाहिए जो वो तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाए। बाबा दिखाते थे, बाबा रात्रि क्लास में वो तारे कोई बहन पढ़ के सुनाती थी कि इतनी तारे आई है, टेलीग्राम आए हैं बाबा को जन्मदिन की, तो वो तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, उसका फिर पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं, फिर मीटिंग करते थे, बाबा कहते थे मीटिंग करो, कैसे शिवरात्रि पर सेवा करनी है, क्या करना है, तो बाबा मीटिंग को सेमिनार कहते थे। तो सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। मीटिंग में कितनी बातें निकलती है कि इस साल का ये थीम है, ये सेवाएं करेंगे, ये सेवाएं करेंगे, तो बाबा कहते हैं सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे तो ढेर रखी है, इनसे बहुत काम ले सकते हैं, ये भी तारे भी दिखा सकते हैं लोगों को टेलीग्राम की, देखो कैसे टेलीग्राम बाबा के बच्चे भेजते हैं शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। तारे भी ढेर रखी है, इनसे बहुत काम ले सकते हो, एड्रेस डालते हैं वो टेलीग्राम पर, एड्रेस क्या डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, यह जो भी पत्र आते थे मधुबन में ऐसे ही लिखते थे, शिव हेडिंग होती थी वो एड्रेस की, शिव टू शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वो रूहानी बाप, वो जिस्मानी बाप, ब्रह्मा जिस्मानी बाप, शिव बाबा रूहानी बाप, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है, रूहानी बाप जिस्मानी बाप द्वारा जिस्मानी रचना रचते हैं ब्राह्मण, ये जिस्मानी रचनाएं। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते, ये नई रचना भगवान ने रची है तो दुनिया नहीं जानती कैसे भगवान रचना रचते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं, ब्राह्मण है चोटी, तो पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, भगवान नई रचना रचेंगे तो कोई शूद्र थोड़ी रचेंगे, सबसे पहले तो ब्राह्मण है ऊंचे से ऊंची चोटी, तो ब्राह्मण है चोटी तो पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है ये चोटी, ब्राह्मण है विराट रूप की चोटी, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो पहले शूद्र तो नहीं हो सकते ना, शिव बाबा शूद्रों को तो नहीं रचेंगे ना, सबसे ऊंच तो फिर ब्राह्मण है उनको रचते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे, शिव बाबा शूद्रों को नहीं रचते, शूद्रों को कैसे रचेंगे, रचेंगे किस द्वारा कैसे, ये तो ब्रह्मा चाहिए ना, रचयिता तो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा रचयिता है तो उसके द्वारा ब्राह्मण ही रचेंगे, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई दुनिया रचते हैं, ये एडॉप्शन है बाप की, नई दुनिया कैसे रच रहे हैं हम सब नई रचना, तो ये एडॉप्शन है, बाबा एडॉप्ट करते हैं, ये एडॉप्शन है बाप की, कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं, ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है, बाबा कई बार कहते थे देवताएं क्या सर्विस करते, कुछ भी नहीं, वो तो प्रलब्ध भोगते हैं, सारी सेवा तो ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है, वो ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। जो लौकिक ब्राह्मण है, भले वो नशा तो दिखाते, हम ब्रह्मा की मुख संतान है, लेकिन बाबा कहते नहीं, वो तो खुक संतान है, और वो ही पवित्र नहीं है तो वो दूसरों को क्या पवित्र बनाएंगे। तो तुम ब्राह्मण सच्चे सच्चे बनते हो मुख वंशावली, जो दूसरों को पवित्र बनाते हो। तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधते, ब्राह्मण नहीं ऐसे कहां जाएंगे राखी बांधेंगे, वो कहेंगे हम तो है ही पवित्र। सन्यासी भी कहते हम तो है ही पवित्र। हाँ, सन्यासी पहले राखी नहीं बंधवाते थे। मुझे याद है हम गए ना यहाँ सन्यासियों को, हम सब राखी बांधने जाते थे रक्षाबंधन पर, तो सन्यासी के पास भी जाते थे, यहाँ थे तो वो कभी नहीं बंधवाते थे। मुझे याद है एक सन्यासी को हमने कहा ये तो एक भाई बहन का स्नेह का रिश्ता है, तो कहा नहीं हम राखी नहीं बंधवाते। तो फिर उसने क्या कहा कि ये कुर्सी रखिए ना कुर्सी, उसको बांधो, क्योंकि उस पर वो बैठता था, ये कुर्सी को बांधो। हमने कहा कुर्सी को तो नहीं बांधेंगे, क्यों कुर्सी को बांधे, हम तो आपको बांधेंगे, ये तो भाई बहन का प्यार का रिश्ता है। तो फिर आखिर मान गया और बंधवाई, नहीं तो नहीं बंधवाते हैं सन्यासी, क्योंकि वो समझते हम तो है ही पवित्र। वो कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो, तुम अपना मुंह देखो भैया, लोग तो पवित्र नहीं है इसलिए और किसी से नहीं बंधवाते हैं, लेकिन बहनों से जरूर बंधवाते थे क्योंकि बहनें तो पवित्र हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अपना मुंह देखो, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते हो। कोई भिखारी हमें राखी बांधे, क्यों हम बांधेंगे, हम तो पवित्र है, जो भिखारी है वो तो पवित्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते हो। सुना, ब्राह्मण किसी शूद्र से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं। बाबा को कई राखी भेजते थे तो बाबा उनको कहते थे क्या बाबा अपवित्र है जो तुम अपवित्र बना राखी बांधते, माना भी उसको पवित्र बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो बाबा अपवित्र है क्या जो तुम बाबा को राखी बांधते हो। कई बार तो बाबा हसीने कहते थे दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। बहन भाई को राखी बांधती रिवाज अभी निकला है, पहले ये नहीं था। पहले तो ब्राह्मण आता था, ब्राह्मण सबके घरों में जाता था। मुझे याद है मेरे भी लौकिक घर में ब्राह्मण आता था और सब जो भी यजमान उनके थे सबको राखी बांधता था, बच्चों को ही बांधता था, बच्चियों को ही बांधता था, तो ब्राह्मण बांधता था। तो इसीलिए बाबा कहते ये बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो तो समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमज से पवित्र रहते हैं। हाँ, युगल दोनों पवित्र रहते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे पवित्र रहते हैं, दोनों बता सकते हैं हम कैसे बाप की श्रीमद पर पवित्र रहते हैं, अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे। हाँ, अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है, तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वालों को राखी बांध सकते हो। हाँ, विकार में जो गिरे हुए हैं उनको राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम तो राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ, फिर पतित क्यों बने। कहेंगे माया से हार खा ली, राखी बांधी, माना पवित्रता की प्रतिज्ञा की, फिर पतित बने तो फिर पूछा क्यों पतित बने, तो फिर जवाब क्या देते हैं, माया से हार खाली। तो ये है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनेंगे। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, सुना, प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, वो जगत जीत बनते, सारे विश्व पर उनका राज्य होता है, प्रजा का थोड़ी सारे विश्व पर राज्य होता है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चों की होती है, बच्चे की होती है जीत। लक्ष्मी नारायण के तख्त पर उनके बच्चे की जीत होती है। वो लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। अब बेटा तख्त पर बैठेगा तो बाप तो नीचे होगा ना, तो वो नीचे होगा और बाप बच्चे को तख्त पर बिठाएगा। तो वो लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है, तो ऊंच नंबर गिना जाएगा, फिर बच्चे का ऊंच नंबर हो जाएगा, पिता का नंबर नीचे चला जाएगा। तो भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा वो बेटा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वो सेकंड ग्रेड हो जाएगा, जो पहला नंबर का राजा है वो फिर नीचे आएगा तो दूसरे उनके बेटे को बिठाएगा, तो वो बाप फिर सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब बच्चा था तो नीचे था, बाप ऊपर था, फिर बाप ने बच्चे को गद्दी दी तो फिर बाप नीचे चला गया, फिर बच्चा ऊपर आ गया, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए, ऊंचा बनना है, विश्व का मालिक बनना है, तो बाबा कहते सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूं, अच्छा पुरुषार्थ तो थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है, वैसे भी पवित्र बनती है, तुम स्वपुरुषार्थ से पवित्र बनो तो ऊंचा पद पाओ, अभी स्वपुरुषार्थ से नहीं बने, सजा खाकर बने तो थोड़े ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं पवित्र अच्छा पुरुषार्थ तो थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है, योग बल से नहीं तो सजा बल से तो पवित्र सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये ड्रामा अनुसार होना ही है, स्वर्ग की स्थापना ड्रामा अनुसार होनी ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो फिर विनाश शुरू हो जाता है। तो क्यों विनाश अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि हम सब अभी तक पूरा पवित्र नहीं बने हैं। तो तुम पवित्र बन जाते हो फिर विनाश शुरू हो जाता है, सत्युग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो, सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, अभी तो देवताओं का राज्य नहीं है, अभी फिर होना है, अभी नहीं है फिर होना है, था अभी नहीं है फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम पांच विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। रूहानी मिलिट्री क्या करती है, पांच विकारों पर जीत पाकर हाँ बाबा कहते जगत जीत बनने वाली है। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्ति बताते हैं, युक्तियां बताते, कितनी युक्तियां बाबा रोज बताते, कैसे पतित से पावन बनो, कैसे पाप नाश करो। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तक विनाश नहीं होगा। अब हमारे ऊपर नई दुनिया लानी है, तो बाबा कहते हैं हाँ तुमको तो पूर्ण पवित्र बनना ही है, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो, सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती ही नहीं है, सतयुग में कभी लड़ाई नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती है वो सब मूंधा हुआ है, वो सब मूंधा हुआ है। इतना बड़ा खेल है, कितने एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट मूंधा हुआ है। जैसे मिसाल बाबा देते, जैसे कठपुतलियां होती है ऐसे नाचती रहती है, तो ये ड्रामा में हम सब कठपुतलियां ऐसे नाचती रहती है, ये भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पाठ बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, तमो प्रधान बन गए, पाठ बजाते बजाते अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हो फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हो, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं, वास्तव में तमो प्रधान बनते हैं, नीचे उतरते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। तो बाबा ने मिसाल दिया है, वास्तव में ये मछलियां तार पर लटकती है ना, वैसे हो मछलियां तार पर लटकती है, फिर धीरे 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 नीचे उतरती है, वास्तव में वो मछलियां तार पर लटकती है, तो इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए, वो जो खिलौना है उसमें मनुष्यों को डालना चाहिए, मछलियों को क्यों डाला। तो क्योंकि मनुष्य आत्मा ऐसे तार से नीचे उतरती जाती है और नीचे आ जाती है, तो इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है, एकदम नीचे उतरे फिर एकदम देखो कैसे वो लिफ्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं, धीरे धीरे नहीं चढ़ते हैं, चढ़ते तो एक सेकंड में, उतरते धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है, तुम भी ऐसे चढ़ते हो फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर से नीचे आने में, 5000 वर्ष लगते हैं, फिर ऊपर जाते हो, कितनी देर में चढ़ जाते हो, बाबा कहते लिफ्ट मिलती है, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट मिलती है, नीचे आने के लिए लिफ्ट नहीं है, नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतरनी है। लिख रहे कई ऐसी बिल्डिंग्स होती है ना, अब एक ही लिफ्ट है और थोड़ी ऊंची लिफ्ट, तो माना एक ही बिल्डिंग, माना एक भी बिल्डिंग है थोड़ी ऊंची है परंतु लिफ्ट एक ही है, तो फिर वहां लिखते हैं कि लिफ्ट नॉट अवेलेबल फॉर गोइंग डाउन, नीचे जाने के लिए लिफ्ट नहीं है, वो सीढ़ियों से जाओ, बाकी केवल ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है। तो बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे चढ़ते हो फिर नीचे उतरते आते हो, 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में, ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं, जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं, बाबा को याद करते हैं तो जल्दी ऊपर जाते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। अब प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है, दोनों दो पहिए चाहिए, तो प्रवृत्ति मार्ग में दो पहिए और दोनों पहिए अगर समान हो फिर तो बहुत अच्छा ऊपर चढ़ जाते हैं, पर एक बड़ा हो और एक छोटा हो तो फिर मुश्किल होता है। तो बाबा देखो मिसाल क्या देते हैं, तो बाबा कहते हैं जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर चले जाते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग माना जैसे जोड़ों को दौड़ाते हैं ना, 3-legged race, 3 टांग की रेस, तो उसमें क्या करते हैं, एक टांग एक की दूसरे की एक टांग वो दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके कहते हैं अभी भागो। अब भागो तो क्या होता है, अब एक थोड़ा ढीला है एक थोड़ा फास्ट है, तो जो ढीला है वो तो गिर जाएगा क्योंकि फास्ट वाला फास्ट जाएगा, पर बंधा हुआ है तो वो भी नहीं दौड़ सकता है ज्यादा और वो तो ढीला है ही है, तो इसीलिए ढीला वाला फिर फास्ट वाले को भी ढीला कर देता है क्योंकि तीन टांगों से दौड़ते हैं। तो यहाँ भी युगल का बाबा मिसाल देते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे जोड़ी जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। अब ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना युगल, यहाँ भी कई युगल बैठे होंगे, जो युगल है हाथ उठाए, युगल आए हैं देखो भट्टी में तो बहुत युगल आए हैं। हाँ तो देखो बाबा खास आपके लिए कहते हैं, तो ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। हाँ जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं, तो ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। युगल है तो ये तीन टांगों की दौड़ हो गई ना, क्योंकि दो टांगों को बांधा हुआ है, तो ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं उस दौड़ी में। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। वो कई बार बाबा पूछते थे, जोड़ी आती थी युगल आते थे बाबा के पास, तो बाबा उनसे पूछते थे दोनों में से कौन आगे है, तो पति कहता था ये आगे है पत्नी के लिए, पर पत्नी कहती थी नहीं ये आगे है, माना दोनों ही समान थे, दोनों ही पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा की होती तो एक दो को आगे करते थे। लेकिन अगर पति थोड़ा ढीला होता था और पत्नी बहुत तेज है तो पति कहता था ये आगे है, पर वो कभी नहीं कहती थी ये आगे है क्योंकि पत्नी आगे थी, तो ऐसे होता था। तो बाबा समझ जाते थे, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कई बार हम कई सेंटरों पर जाते हैं तो वहां युगल मिलते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है वो तो ज्ञान में पक्की है, पति इतना पक्का नहीं लेकिन आया मिलने के लिए, तो पहले वो कान में कहती है ना दीदी आप मेरे पति को समझाओ और मेरे पति को थोड़ी प्रतिज्ञा कराओ, वो ढीला है, तो वो पहले से ही बता देती है। तो बाबा कहते हैं तो फिर तो दूसरा रोक लेता है कहाँ, तो दोनों ही गिर पड़ते हैं ना, दोनों ही गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, अब किस बात का वंडर खाते हैं, दोनों गिर पड़ते हैं उसका तो वंडर नहीं खाते हैं, लेकिन किस बात का वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है। अब बूढ़ा बूढ़ी है दोनों है, परंतु बूढ़ों को भी काम की अग्नि लगती है, अब इतने बूढ़े हो गए अभी क्या भिखारी बनना, लेकिन बूढ़ों को भी काम की अग्नि लगती है तो वो भी गिर पड़ते हैं। देखो बाबा सब कुछ मुरली में सुनाते हैं, तो वो भी गिर पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी उसने गिराया ना, ऐसे बाबा कहते ऐसे थोड़ी उसने गिराया, पति ने गिराया, ऐसे नहीं। गिरना न गिरना अपने हाथ में है, कोई कहे मेरे पति ने मुझे गिराया विकार में, कोई कहे मेरी पत्नी ने गिराया, बाबा कहते कोई किसको गिरा नहीं सकता है, अपने हाथ में है अगर पवित्र रहना है तो। तो बाबा कहते गिरना न गिरना अपने हाथ में है, कोई धक्का थोड़ी देते हैं जो नीचे गिरा देते हैं, कोई धक्का थोड़ी देते हैं, हम गिरे क्यों, क्यों हम गिरे, वो कितना भी करे परंतु मुझे गिरना नहीं है ये पक्का निश्चय रखना, हम गिरे क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, विकार में नहीं गिरेंगे, गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है थप्पड़ लगती है, जोर से थप्पड़ लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, अब किसको गिराया तो वो गिरा, चोट लगी तो हड्डी भी टूट जाती है, तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। ये भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए, इतने सुंदर रूप से वो तार टेलीग्राम के शब्द होने चाहिए, जो किसको भी मिले वो पढ़े तो समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं कि ऐसे तारे लिखो, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को लिखो, क्योंकि लेटर लिखना माना कब पहुंचेगा, और ईमेल तो होते नहीं थे, तो इसलिए तार करते थे ताकि उसी दिन उनको पहुंच जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं, क्या लिखो उस तार में, कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां आती है बाबा के पास, बहुत चिट्ठियां आती है, सब लिखते हैं लेटर पर, क्या लिखते हैं, बाप दादा। तो तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। तो वो जो लेटर आते थे ना, शिव बाबा केयर ऑफ, तो कई बार ब्रह्मा बाबा भी नहीं लिखते, टू बाप दादा, तो पोस्ट ऑफिस वाले समझ जाते टू बाप दादा माना ब्रह्मा कुमारियों के लिए ये लेटर है। तो बाबा कहते हैं, तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी बाप दादा कहते हैं क्या? एक तो नहीं होगा ना, बाप अलग होता है दादा अलग होता है, तो एक को तो बाप दादा नहीं कहते हैं ना। ये तो वंडरफुल बात है कि शिव बाप इस दादा ब्रह्मा में है, तो ये तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं, अब कोई शरीर छोड़े तो रोता, रोना तो बिल्कुल नहीं है, तो कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं कि उसका इतना ही पाठ है। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही कह सकते हैं। वो ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वो भी नंबर वार, कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं है, इसीलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा है, अब गरम तवा पर पानी की बूंद डालो तो उड़ जाएगा, तो आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा है, तमो प्रधान पतित है, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी, हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन वही फिर पतित बनते हैं, ये भी किस कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अगर छोटेपन से ही ये नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी, समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वो असर निकल जाता है, ये है ही ईश्वरीय पढ़ाई, फर्क है ना। परंतु जब वो लगन भी लगे ना, हाँ लगन लगे सर से बड़ी बात है, लगन लगे, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी मिलिट्री बन, पांच विकारों पर जीत पानी है, पवित्र जरूर बनना है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्म अभिमानी होकर बजाना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है, साक्षी होकर हर एक एक्टर का पाठ देखना है। वरदान, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर अकेले नहीं चलो। बाप कहते हैं बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हूं इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। बाबा के हाथ में हाथ, बाबा के साथ, तो सबसे बच जाएंगे। स्लोगन, योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं होगा। योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ के अंतर्गत जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। वो तो तैयार है पर इशारा चाहिए हम लोगों का, विनाशकारी आत्माओं को। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। विनाश ज्वाला को तेज करो कैसे? अपने पावरफुल संकल्प, ज्वाला रूप संकल्प से। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपको जैसे कल शशि दीदी ने बताया था कि कल यानी 19 तारीख को भ्राता निर्वैर जी का के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस का आयोजन हो रहा है, और कल 19 तारीख को सर्व स्नेही दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सर्व स्नेही दिवस तो शुक्रवार 19 सितंबर 2025 प्रातः 10 बजे डायमंड हॉल में निमंत्रण दिया है। इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु आप सादर आमंत्रित है। ओम शांति।
ओम शांति। जैसा कि अभी अभी शिमा ने बताया, कल 19 तारीख आदरणीय भ्राता निवेद जी की पहली पुण्य तारीख है, जिसके लिए कल प्रातः मुरली क्लास के बाद जो हमारे वरिष्ठ दादियां वरिष्ठ भाई महादानी में जाएंगे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और 10 बजे डायमंड हॉल में बैठेंगे। 10 बजे से भ्राता निर्वय जी के साथ के स्वस्मरण सुनाए जाएंगे, और 11:30 बजे प्यारे बाबा और निर्वय भाई को भोग स्वीकार कराया जाएगा, और भोग के बाद जो बाबा का संदेश होगा वो भी सुनाया जाएगा। तो इसलिए सभी मधुबन निवासी भाई बहने उन सबको निमंत्रण है, वह अवश्य ही जाएं, और साथ साथ बाकी भाई बहने मधुबन निवासी ग्लोबल हॉस्पिटल के सभी भाई बहनों को विशेष निमंत्रण है, और बाकी भाई बहने जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट है वह अवश्य ही जाएं, सबको निमंत्रण है, और जो भी जाएंगे तो दोपहर का ब्रह्म भोजन भी स्वीकार करके आएंगे। बाकी तो कल भारत के और देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर भोग लगाया जा रहा है, तो कल पांडव भवन में कल लगाते हैं या परसों लगाते हैं आज बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, क्योंकि हम कल प्रातः नीचे ही चले जाएंगे, इसलिए हो सकता है कल लगाएं, हो सकता है परसों लगाएं, तो वो फिर आपको बताया जाएगा और बोर्ड पर लिखा जाएगा। और आज तो वैसे भी गुरुवार है, हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और जो भाई बहने वतन में जाना चाहते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। थोड़े ही लोग जाएंगे क्या है? बाबा हमेशा क्या कहते हैं, सबको आना है, बाबा अकेले थोड़ी स्वीकार करते हैं, बाबा तो कहते सब के सब आओ। बाबा सब नहीं आते हैं तो बाबा जबरदस्ती भी बुला लेते हैं, आज ऐसे नहीं करना है, बाबा से प्यार है तो बाबा के पास जाना चाहिए, और बाबा को भी ऐसे अकेले थोड़ी भोग स्वीकार कराते हैं, सब मिलकर के करते हैं, इसलिए सबको वतन में जाना है, बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है, जो भी मन का संकल्प है बाबा के सामने रख के हल्के होकर के बाबा से बात करनी है, और बाबा तो वैसे ही आपको हर बात का रिस्पांस मुरली में और योग में और खास करके भोग के समय देते ही हैं, और बाबा कुंभ से मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे, और आज के दिन तो कहां कहां से भाई बहने भी आए हैं प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराने, और कुछ कुछ तो पितरों को भोग स्वीकार कराने के लिए, और कुछ कुछ तो अपनी ही खुशी के भोग के लिए आए हैं, तो सबको वतन में जाना है और बाबा को भोग स्वीकार कराना है, जिनके निमित्त है उनका भी संकल्प बाबा के सामने रखना है, और भोग के बाद फिर बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन होगी भाइयों की उस तरफ, और बाकी बच्ची की टीचर्स बहने और माताएं दो लाइन में होंगी, बच्ची की टीचर्स बहने या इस कैमरा के पास होंगी, और बच्ची की माताएं दूसरे कैमरा के पास होंगी, और बाकी माताएं जो है वो दो लाइनें लगाएंगी जहां पर आप सबको अमृत मिलेगा, और बहुत ही प्यार से आराम से आप सबको लाइन में आना है। भाइयों की तरफ वर्षा बहन अमृत पिलाएगी, टीचर्स बहनों को हमारी गांव देवी नेहा बहन पिलाएगी, और माताओं को अस्मिता बहन, और बाकी माताओं को मंजू बहन और त्रिवेणी बहन अमृत पिलाएंगी। अभी हम सब चलते हैं बाबा के पास, बाबा को भोग स्वीकार कराएं। अच्छा, बट्टी वाले भी ध्यान देंगे, कल आप जो भोग का दृश्य है वो यहाँ भी देख सकेंगे, बाद में भी देख सकेंगे, और कल आपकी बट्टी यहाँ ही चलेगी, क्योंकि जाने के लिए इतना ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो इसलिए बट्टी वाले कल यहाँ ही रहेंगे, और कल यहाँ पर अपने मन की श्रद्धा सुमन यहाँ ही अर्पित करेंगे, तो बट्टी वाले कल यहाँ ही रहेंगे, आप सबका जो प्रोग्राम जैसा है वैसा ही रहेगा। ओम शांति। Thank you.
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में हो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज शुक्रवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादों के साथ बाबा के पास जाना हुआ और जैसे वतन में गए तो वहां बहुत दूर से एक लाइट के अलग अलग नजारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन नजारों में कुछ अजीब प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने देखा मेरी ओर, कहा बच्ची ये क्या देख रही हो। मैंने कहा बाबा ये तो लाइट के अलग अलग प्रकार के कुछ नजारे हैं, लेकिन इसमें कोई रस नहीं और इसके अंदर वातावरण बड़ा अलग से दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही बाबा ने कहा, कहा बच्ची चलो देखते हैं। तो वहां जाते हैं तो जैसे आग का स्वरूप होता है, वो आग का स्वरूप था, पहले छोटा है, फिर बहुत धीरे धीरे लोग एकत्रित होने जा रहे हैं उस आग को बुझाने के लिए, वो मदद कर रहे हैं। कुछ तो आग बुझाने के लिए जैसे प्रयत्न करते थे उतना तेज जोर से उसकी लपटें निकलती थी, और कुछ ऐसे थे आग को बढ़ाने के लिए और ज्यादा कुछ न कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जिससे वो और ज्यादा चारों तरफ फैलती थी। और फिर कुछ ऐसे थे जो उसको देख करके भयभीत भी हो रहे थे और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे देख रहे हैं आज की सृष्टि की हालत क्या है। सृष्टि अपने तरफ ऐसे स्वरूप की ओर पहुंच चुकी है जिसमें कुछ लोग उसको ठीक करने में, कुछ उसको बढ़ावा देने में, कभी प्रकृति कभी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण ऐसी भयानक परिस्थितियों को सामने ला रहे हैं कि सृष्टि का जो स्वरूप है वो बहुत ही भयावना डरावना और लोगों के सामने चिंता का विषय है। और सब लोग डर के मारे कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई एक को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ अपने बचाव के लिए दौड़ रहे थे। तो चारों ही तरफ धुआं ही धुआं था और धुएं की तरफ बहुत दूर एक छोटी सी चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। तो जो भयभीत लोग थे उनको लाइट भी समझ नहीं आती थी और जो थोड़े भावना वाले थे परमात्मा प्यार के बच्चे थे तो वो क्या करते, उस लाइट की ओर गए, और जैसे वो लाइट की ओर जाते हैं चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, धुआं ही धुआं है, बादल है, उनको रास्ता दिखाई नहीं देता है। फिर भी वो लाइट की ओर जाते हैं तो लाइट जैसे धीरे धीरे बढ़ती है तो उनको रास्ता दिखाई देता है, तो आगे दूर जाते हैं, एक बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट कमरा बना हुआ है जिसमें एक छोटी सी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी, और ये दुनिया के लोग थे, उस लाइट को दूर से देख रहे थे। फिर बाबा ने क्या दिखाया, उस कमरे के पास जहाँ छोटी लाइट जल रही थी वहाँ बाबा के बच्चों को फरिश्ते के रूप में इमर्ज किया। तो बाबा ने उन फरिश्तों को कहा कि इस लाइट को देखो, और हर फरिश्ता उस लाइट को जैसे देखता था तो जैसे हर बच्चे की स्मृति होती थी तो स्मृति के आधार से वो लाइट का रूप थोड़ा थोड़ा बड़ा होता था। और कई बच्चे ऐसे थे जो सोच रहे हैं, स्मृति नहीं है, तो उनके सामने वो जो लाइट का रूप था वो बिल्कुल बंद हो गया। तो बाबा ने कहा कि समय की परिस्थिति को बच्चे देख रहे हैं, और बाप ने बच्चों को कौन सा कार्य दिया है, विश्व के सामने लाइट के दीपक बनकर के और लाइट हाउस बनकर के सारे विश्व के अंदर रोशनी शक्ति देनी है, लेकिन उसके लिए बच्चों को अपना स्मृति का स्विच कभी कभी दबाना भूल जाता है। तो वो स्मृति का एक स्विच था, तो उस स्विच के ऊपर हल्का सा टच करना था, लेकिन उस स्विच के ऊपर भी कई प्रकार की विशेष बातें लिखी हुई थी। कौन सी, एक था बाप ने हमको चुना है, हम सब अवतरित आत्माएं हैं। दूसरा लिखा था विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त है, और तीसरी बात कि मुझे सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति को एक रस अंगद के समान बनाना है। चौथी बात थी कि भविष्य दुनिया के निर्माण के आधार मुहूर्त है, तो बाबा ने कहा इस स्मृति के स्विच को ऑन करें। कई बच्चे जो है एक बात पे हाथ लगाते थे दूसरी बात को भूल जाते थे, कई दूसरे पे लगाते थे तीसरी को भूल जाते थे। तो जैसे बाबा ने कहा कि बच्चों को इन चारों ही बातों पे ध्यान देना है, तो जिन्होंने इन चारों पे हाथ किया वो समृद्धि स्वरूप बने, तो वैसे ही इतनी सुंदर लाइट निकलती, और जैसे उस आकाश देने का चारों तरफ शीतलता फैला रही थी, और जो अग्नि की लपटें निकल रही थी वो धीरे धीरे शांत होती गई। तो बाबा ने कहा भविष्य दुनिया से पहले बच्चों को आज की दुनिया के अंदर जो ऐसे भय नफरत की ईर्ष्या की आग है और दुनिया में जो दुख है उसको शांत करना बच्चों का काम है, और तुम बच्चे बाप के साथ अवतरित आत्माएं हो। फिर बाबा ने किसान ने क्या किया, बाबा के सामने बहुत से बच्चे थे तो बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे, बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि आज बाप के सामने कौन बैठे हैं? लाडले बच्चे हैं, बाप को भी नाश है और ऐसी जगह से आए हैं। तो बाबा वतन में बुला करके उनको बहुत प्यार कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कहाँ, बाबा ने कहा ऐसा स्थान जहाँ सूर्य की पहली किरण निकले, तो ऐसे बच्चों को बाप ने वैसे बुला करके ज्ञान के सूर्य के द्वारा प्रकाश दिलाने के निमित्त जो बच्चे बने हुए हैं और बाप की और सब दादियों की श्रेष्ठ कर्म भूमि से आए हैं, सबको बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे और सबको ऐसे हाथ से बहुत रास भी करा रहे थे। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो भोग के भी बहुत हैं। तो बाबा के सामने तीन प्रकार के थे, एक थे जो पितरों के लिए थे, एक थे जो खुशी के लिए भोग के लिए थे, एक सब वो बच्चे थे जो मन ही मन बाबा से बात कर रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे इस समय हर एक को अपने पितरों के प्रति सम्मान और रिस्पेक्ट है, ऐसे ही हर आत्मा को हर एक के गुण देखते हुए उन गुणों के द्वारा जो हमारा प्यार और रिस्पेक्ट है वो हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं और वो शुभ भावनाएं आत्माओं को बहुत शक्ति और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए और भी प्रेरणा देती हैं। तो बाबा ने उन सबको इमर्ज किया और अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया और खुशी वाले भोग वालों को लो, बाबा तो जैसे हाथ में झूले में लेकर के झुलाते हैं ऐसे खुशी के झूले में सब झूल रहे थे और सबको याद दिया ओम शांति।